Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yadeveha tadamutra, yadamutra tadanviha. मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। परमात्मा के संदर्भ में श्रुति ने कहा वो परमात्मा एक है। सनातन वैदिक धर्म एकेश्वरवादी हैं, एक ब्रह्मवादी हैं, अद्वैतवादी हैं। परमात्मा एक ही है। परमात्मा यदि दो हो न तो वो परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि सर्वसत्ता में दो चीजें समा नहीं सकती हैं। जैसे एक घर में दो मालिक हो घर नहीं चलता है, ऐसी संपूर्ण सृष्टि विधान और सृष्टि के संचालन के लिए केवल एक ही सत्ता की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि ब्रह्म परमात्मा जगत सृष्टा एक है, अधिष्ठान एक है, सर्वावभासक चैतन्य सत्ता एक है। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, एकम अद्वितीयं ब्रह्म। श्रुति ने कहा कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, लेकिन शब्द जोड़ दिया एकमेव, अद्वितीयम ब्रह्म। एकम ब्रह्म इतना भी कहते तो चल जाता, अद्वितीयम ब्रह्म इतना भी कहने पर चल जाता, लेकिन श्रुति ने एकम बोला फिर अद्वितीयम, और उसके साथ साथ एक शब्द प्रयोग किया एव, एकम एव, अद्वितीयम एव ब्रह्म। इसको एक इसलिए बोला क्योंकि आपके सामने दूसरा है। ये एक कहना द्वितीय के सापेक्ष है। ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, संख्याएं, ये सापेक्ष संख्याएं हैं। दो हैं इसलिए एक हैं, और एक है इसलिए दो हैं। तीन चार पांच ये अनेकत्व संख्या में है, ये निरपेक्ष नहीं है। जहां पर एक ही वस्तु होना उसको एक कहना भी बनता नहीं है। जहां दूसरा होगा तो वहां एक बोलेंगे। हमारे यहां तीन प्रकार की सत्ता है। एक है पारमार्थिक सत्ता, दूसरी व्यावहारिक सत्ता, और तीसरी प्रातिभाषिक सत्ता। ऐसे पारमार्थिक रूप से देखा जाए तो दो ही सत्ता समझ लीजिए, है तो एक ही सत्ता, लेकिन प्रातितिक सत्ता को मानकर दो मान लिया गया, एक परमात्मा की सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता माने जिसका कभी नाश न हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई पैदा होने का भय ना हो, मरने का भय ना हो, वो परमात्मा की सत्ता। त्रैकाला बाध्यत्वम, सत्यत्वम, जो तीनों कालों में जिसका बाध ना हो, जिसका नाश ना हो, वो पारमार्थिक सत्ता है परमात्मा की। और ये जो जगत है हमारे सामने बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इस दुनिया की जो सत्ता है व्यावहारिक सत्ता है, ब्रह्म ज्ञानैक बाध्यत्वम, जिसका ब्रह्म ज्ञान से बाध हो जाता है और हमारे प्रतीति का व्यवहार का विषय है। हम संपूर्ण व्यवहार जिस सत्ता में करते हैं वो व्यावहारिक सत्ता है। अभी हम लोग यहां प्रवचन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, आप अपने दैनिक क्रियाओं को करते हैं, खाना पीना उठना बैठना सोना, अनेकों व्यवहार करते हैं जिस सत्ता में, इसलिए सत्ता को व्यावहारिक सत्ता कहा जाता है। लेकिन ये सत्ता भी सत्य नहीं है। और तीसरी जो सत्ता है वो प्रातिभाषिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता माने केवल प्रतीति है, प्रतीति मात्र सत्ता तत्व, स्वप्न पदार्थ है प्रातिभाषिक। स्वप्न में आप जितना देखते हैं उतना ही होता है, उससे परे नहीं होता है। स्वप्न पदार्थों की अज्ञात सत्ता नहीं होती, प्रातिभाषिक पदार्थों की अज्ञात सत्ता नहीं होती। इस बात को मैं थोड़ा सरल करूंगा, आप ध्यान देके सुनेंगे। अज्ञात सत्ता का होना और ज्ञातैक सत होना, इसमें अंतर है। व्यावहारिक सत्ता में, यहां पर आप प्रवचन श्रवण करने के लिए आए हैं और हमारे दिलीप भाई दो तीन दिन नहीं आए, संडे टू संडे आते हैं या कोई विशेष समय में आते हैं, वड़ाला से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। लेकिन जब वो नहीं आते हैं ना तो अज्ञात हो गई कि नहीं, प्रतीति का विषय नहीं, आंख से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं उस समय वे है कि नहीं, भले ही यहां पर वो दिखाई नहीं दे रहे थे उसके बाद भी वो थे। माने हमारे अज्ञान का विषय होने के बाद भी जिस सत्ता का अस्तित्व बना रहे हैं उसको बोलते हैं अज्ञात सत, अज्ञात सत। और ये व्यावहारिक सत्ता में है, बहुत सारी चीजों को हम नहीं जानते हैं उसके बाद भी वो चीजें होती हैं। लेकिन जो स्वप्न पदार्थ हैं, जो भ्रांति के पदार्थ हैं, वो ज्ञातैक सत होते हैं। जैसे स्वप्न में आपने कोई चीज की, खाए पिए गाए नाचे बजाए, और उसके बाद स्वप्न टूटा, जागृति में आ गए, तो जागृति में आने के बाद वो स्वप्न पदार्थ है कि नहीं, इसी को अज्ञात सत बोलते हैं। जब वो अज्ञात है ना तो है ही नहीं, अज्ञात असत। जब तक उसका ज्ञान था तभी तक थे मालूम पड़ रहे थे, और जब उसका ज्ञान समाप्त हो गया तो बात खत्म हो गई। आपकी आंखों के सामने नहीं है तो है ही नहीं। हो आप स्वाद ले रहे थे तभी तक वो स्वप्न पदार्थ मालूम पड़ रहे थे, हाँ है बहुत अच्छा भोजन बना है, और जब वो भोजन समाप्त हो गया जागृति में आ गए तो उसकी सत्ता है कि नहीं, नहीं है, है ना। ज्ञातैक सत है वो, जब ज्ञान है तभी है, और जब ज्ञान ना हो तो वो नहीं है। आपके सुख दुखों को भी ज्ञातैक सत कहा है। आपको सुख हो रहा है तो सुख है, दुख हो रहा है तो दुख है, और आपको मालूम ही ना हो कि मेरे को सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, तो सुख दुख है कि नहीं फिर। ये बात बड़ी मजेदार है, सुख और दुख जो है ना हमेशा होते हैं तो अपने ज्ञान के साथ होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम दुखी तो थे लेकिन हमको पता ही नहीं था, ऐसा संभव है नहीं है। आप जब सुखी होंगे तो सबसे पहली खबर किसको मिलेगी? आपको ही मिलेगी। और आप दुखी होंगे तो पहली खबर भी आपको ही मिलेगी। हां, ये मैं कह सकता हूं कि अरे आप दुखी थे, मेरे को मालूम नहीं था, मैं बोल सकता हूं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं दुखी था लेकिन मेरे को ही पता नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत सुखी थे लेकिन हमको ही पता नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हां, ये हो सकता है कि आप बहुत धनवान थे लेकिन आपको पता ही नहीं था। हो सकता है कि नहीं? हां, बहुत सारा धन आपको बैंक बैलेंस करके पिताजी ने छोड़ा था, मालूम ही नहीं था, बाद में मालूम पड़ा। बहुत सारी चीजें आपको मालूम नहीं होने के बाद भी होती हैं, लेकिन सुख दुख ऐसा नहीं है, वो ज्ञात ही सत्य है। आपको जब मालूम पड़ा तो है, और मालूम नहीं पड़ा तो नहीं है। अरे मालूम ही होता है, जब भी होता है तो मालूम ही होता है। ये सुख और दुख की सबसे बड़ी विशेषता कि आपको जब भी मालूम होता है तो मालूम ही होता है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हो और आपको मालूम न पड़े। और ऐसे ही स्वप्न पदार्थ हैं, जब वो होते हैं ना तभी मालूम पड़ते हैं, और जब नहीं होते तो मालूम नहीं पड़ते। मैंने मालूम होना और स्वप्न पदार्थ अलग नहीं है। इसे दृष्टिरेव सृष्टि ऐसा कहा गया। स्वप्न पदार्थ दृष्टा की दृष्टि है, दृष्टि के अतिरिक्त और कोई नहीं है चीज वहां। मन ही, मन एव रथान रथ योगान पथान सृजति, ये मन ही रथ बने, मन ही घोड़े बने, और वो रास्ता भी मन ही बना। इसलिए स्वप्न पदार्थ केवल मालूम पड़ते हैं, होते नहीं है, और इसीलिए उनको कहा जाता है प्रातिभासिक। जैसे जगे और आपको मालूम पड़ा कि वहां कुछ नहीं था। और भी दृष्टांत दिए जाते हैं, जैसे रज्जु में सर्प आपको मालूम पड़ता है, शुक्ति में रजत आपको मालूम पड़ता है। जितने भी भ्रांति के विषय पदार्थ हैं, वो सारे भ्रांति के विषय पदार्थ होते नहीं है, केवल दिखाई देते हैं। आपको रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा था तो उस समय वो जिस समय दिखाई दे रहा था उस समय था कि नहीं? चलो बाद में नहीं होगा, पहले नहीं होगा, लेकिन जिस समय वो दिखाई दे रहा था उस समय सर्प था कि नहीं? पक्का? हाँ। अब शुक्ति में आप, शुक्ति माने सीप, आप नदी के किनारे भ्रमण कर रहे हैं और चमक उठी सीप, तो जिस समय सीप में चांदी दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी तरह से चमक रही थी चांदी, उस समय वो चांदी थी कि नहीं? उस समय भी नहीं थी, केवल आपको मालूम पड़ रही थी सीप चांदी, मालूम पड़ रही थी, उस समय भी उसमें वो चीज नहीं थी। आज जो आपके हाथ में सीप आई उसके बाद भी नहीं, उसके पहले भी नहीं। इसी को बोलते हैं त्रैकालिक अत्यंता भाव का निश्चय। तीनों कालों में वो नहीं था, वर्तमान में नहीं है, अतीत में नहीं था, और भविष्य में भी नहीं होगा, आपका ऐसा निश्चय हो जाता है। वो प्रातीतिक चीज है, इसीलिए उसका नाम रखा प्रातिभाषिक सत्ता। ये तीन प्रकार की सत्ताएं, एक पारमार्थिक सत्ता, दूसरी व्यावहारिक सत्ता, और तीसरी प्रातिभाषिक सत्ता। और जहां पर ये तीन सत्ताएं मानते हैं ना, इसीलिए वहां पर प्रातिभाषिक ब्रह्म सत्ता को एकम ऐसा कहा। एकम, आदमी को भ्रम हो जाता है ना, कई बार आदमी को एक में अनेकता का भ्रम हो जाता है, इसलिए श्रुतियों के कहना पड़ा अनेकता के भ्रम को, नानात्व के भ्रम को मिटाने के लिए श्रुति को कहना पड़ा एकम। अरे बोले ये अनेक मालूम पड़ रहा है, अनेक नहीं है, ये बहुत सारी दुनिया जो मालूम पड़ रही है वो बहुत सारी दुनिया नहीं है। एकम कैसे? अरे भाई स्वप्न में देखो ना, आप स्वप्न में हजारों की भीड़ में बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे थे, कभी कभी आप लोग प्रवचन भी करते होंगे स्वप्न में? नहीं करते हैं। आप लोग स्वप्न देखते होंगे कि हम प्रवचन सुन रहे हैं, प्रेमपुरी में आए हुए हैं, तो कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि हम प्रवचन कर रहे हैं? हाँ हाँ, जरूर करते होंगे। और हजारों की भीड़ है, उस हजारों की भीड़ में आप बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं। और जैसे जग गए तो अब बताओ कि आप कितने हैं, और जिस समय आप प्रवचन कर रहे थे उस समय कितने थे? आप प्रवचन कर रहे थे उस समय भी एक, और जब आप स्वप्न से जागृति में आए और उस समय भी एक। माने अनेक पदार्थ दिखाई देते हुए भी आप एक हैं। इसी को तो बोलते हैं ना, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। ब्रह्म एक है, और ये सारी दुनिया जो दिखाई दे रही है ना, ये अनेक, ये एक में अनेकता का भ्रम है। आप स्वप्न में एक थे लेकिन अनेकता का भ्रम हुआ कि नहीं? बहुत बड़ा भ्रम हुआ। स्वप्न में बहुत लंबी चौड़ी चीजें हांकता है आदमी, और बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, और उसके बाद भी वो होता है एक। एकम और एव, एक ही ऐसा समझ लीजिए। स्वप्न में एक ही आत्म तत्व है, और अद्वितीयम वहां द्वितीय नहीं है, है ना, दूसरा नहीं है, एक ही है। आप ब्रह्म की एकता को समझना चाहते हैं, स्वप्न को सामने रखो, आपको समझ में आएगी बात। इसलिए अद्वैत सिद्धि की प्रतिज्ञा है, द्वैत मिथ्यात्व पूर्वकत्वात्। जो अद्वैत की सिद्धि है ना, द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक है। ये द्वैत माने प्रपंच आपका मिथ्या है, स्वप्न है, तभी आपका ब्रह्म एक सिद्ध होगा, अद्वितीय सिद्ध होगा। और इसीलिए ब्रह्म सूत्रकार कहते हैं कि पहले हम मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हैं। एकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म, यहां बड़ा सुंदर विस्तार किया है। एकम एव अद्वितीयम् ब्रह्म, एकम कहकर उन्होंने ये बताया कि भैया इसके अंदर स्वगत भेद नहीं है। पंचदशी में बड़ा सुंदर वर्णन किया इसका, ये प्रक्रियात्मक बातें हैं। स्वगत, सजातीय और विजातीय भेद हुआ करते। जैसे हमारा ये जो शरीर है ना, ये शरीर एक है, आप बैठे हैं अकेले, और आपको कोई बोले कि भैया आप लोग कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? एक हैं। आप सत्संग में आए हैं, हम पूछेंगे कि आप कितने लोग आए, बोले एक। लेकिन एक होते हुए भी इस एक में कितने भेद हैं? आप एक हैं शरीर दृष्टि से, लेकिन इस शरीर में कितने भेद हैं? आंख हैं, दो है आंखें, नाक है, कान है, हाथ है, पैर हैं, अरे बहुत सी चीजें हैं, बहुत से अवयव मिलकर एक बना शरीर। और इसको बोलते स्वगत भेद। स्वगत भेद का मतलब होता है स्वस्मिन भेदः, स्वगत भेदः। जो अपने में जो भेद है ना, एक अपने में, उसको स्वगत भेद कहते हैं। जैसे एक वृक्ष है, और उस एक वृक्ष में शाखा, पल्लव, फूल, फल, तना, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अवयव हैं, और उन बहुत सारे अवयवों को मिलकर के एक वृक्ष बना, इसको बोलते हैं स्वगत भेद। तो ब्रह्म एक है, लेकिन ब्रह्म में स्वगत भेद है कि नहीं? हाथ, पैर, नाक, कान, ये कोई भेद है कि नहीं? तो श्रुति ने कहा नहीं, एकम। एकम कह करके उसमें जो स्वगत भेद है ना, अवयवों का भेद, वो नहीं है, निरवयव है वो, एकम। और दूसरा, स्वगत भेद तो नहीं है, लेकिन चलो मान लो सजातीय भेद होगा। सजातीय माने जैसे हम लोग एक है, एक ही है, लेकिन मनुष्य का मनुष्य के साथ जो भेद है ना, ये बोलते हैं सजातीय भेद। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, एक पशु का दूसरे पशु के साथ, एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष के साथ जो भेद हैं, जो अलगाव हैं, उसको सजातीय भेद कहते हैं। अपने जातीय पदार्थों के साथ जो भेद हैं वो सजातीय भेद। जब ऋषभदेव जी महाराज जी पैदा होने के पहले उनके पिताजी ने यज्ञ किया, नाभि बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ का प्रयोजन था बेटा हो जाए। पुराने जमाने में लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, तप किया करते थे, बेटा चाहिए तो तप करते थे, धन संपदा चाहिए तो तप करते थे, सम्मान चाहिए तो तप करते थे। और ऋषभदेव जी महाराज जी के पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, पुत्रेष्टि का यज्ञ, और उसमें संकल्प था कि भगवान के जैसा बेटा हो, केवल बेटा हो नहीं, भगवान के जैसा बेटा हो, क्योंकि बेटा हो और धुंधुकारी जैसे बेटा हो तो आप भागवत में श्रवण करते हैं, आपकी संतान भी अच्छी होना चाहिए तभी आपको सुख मिलेगा, और आपकी संतान अच्छी ना हो तो राम राम, फिर हम लोग तो है ही, वेद जी महाराज आपका नाम भी वेद है और आपके ऊपर हम प्रवचन करते हैं वेदों उपनिषद पर, आपका नाम वेद इसलिए है क्योंकि आपके पास वेद है, एक नहीं चार वेद हैं, आप उसकी सुरक्षा करते हैं। बेटा तो हुआ आत्मदेव को, बेटा तो आया, लेकिन बेटा कैसे आया, धुंधुकारी आया। अब ऐसा बेटा आ भी जाए तो अपनी जो संपत्ति है, अपना सम्मान जो है, वो समाप्त कर देगा। इसलिए उन्होंने केवल बेटा नहीं चाहा, उन्होंने कहा त्वत् सदृशो पुत्रो भूयादिति, तुम्हारे जैसा बेटा हो। भगवान तो मुसीबत में पड़ गए, भगवान ने कहा मेरे जैसा दूसरा तो है ही नहीं, तो मेरे जैसा कैसे होगा वो, और यदि मेरे जैसा होगा तो फिर मेरे जैसा ही होगा ना, यदि मेरे से थोड़ा सा भी थोड़ा आगे पीछे होगा तो मेरे जैसा नहीं होगा वो, और जब मेरे जैसा होगा तो फिर भगवान ही होगा वो, तो दो भगवान होंगे। और इस चैतन्य सत्ता में दो द्वैत को तो स्वीकार ही नहीं किया जाता है। भगवान ने कहा ये तो असंभव है दूसरा भगवान पैदा हो, ये तो संभव ही नहीं। अच्छा जब दूसरा होगा तो पैदा होने के बाद होगा कि बिना पैदा हुए होगा, वो दूसरा होगा उसको पैदा होना होगा, और जो पैदा हुआ होगा तो फिर भगवान के जैसा होगा कि नहीं हो, भाई भगवान से कोई भगवान पैदा हो गया तो भगवान के जैसा होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला जो है वो अज है, जो पैदा होगा नहीं है, और जो दूसरा होगा वो पैदा हुआ होगा, वो जन्म मत होगा वो, और जो जन्म मत होगा वो तो नाशवान भी होगा वो, फिर वो भगवान की जैसा कैसे होगा। भगवान ने कहा भैया मेरे जैसा तो हो नहीं सकता है, असंभव बात है, क्योंकि मेरे जैसा तो मैं हूं। ये सजातीय भेद नहीं है, भगवान के जाति वाला कोई दूसरा भगवान नहीं। ध्यान दीजिए हमारे ऊपर जो लोग बोलते हैं ना कि ये हिंदू सनातन हिंदू वाले अनेक ईश्वरवादी हैं, अनेक भगवान मानते हैं, आप अनेकों देवता मानते हैं कि अनेकों भगवान मानते हैं? हाँ भाई सैनिक तो बहुत होते हैं, लेकिन राजा एक है, आपके देश का प्रधानमंत्री कितने हैं, एक ही है, और राष्ट्रपति एक ही है, लेकिन उसके नीचे काम करने वाले बहुत हैं। हम अनेक देवतावादी हैं और एकेश्वरवादी हैं, भगवान एक ही है, उसमें स्वजातीय भेद नहीं है, अनेक वादी होते तो अनेक ईश्वर होते, ईश्वर एक जैसे होते फिर। और भगवान ने ये कभी नहीं बोला होता कि भैया मेरे जैसा मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा बोला होता क्या? भाई भगवान अनेक होते हैं, ईश्वर अनेक होते तो भगवान बोलते ठीक है भैया, ठीक है मेरे जैसा कोई दूसरा भगवान भेज देता हूं तुम्हारे पास, और तुम्हारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ये सजातीय भेद नहीं है, ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है।